आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।